सबके पास सेल फोन है, आप सब जरा सा उसको बंद कर दो इस हॉल में। जब हॉल में प्रवेश करते हो उस समय जरा सा बंद कर दीजिए आपके लिए भी। तो लग दे और आने वाले हैं ने? सब तो नहीं आए अब तक, 10-11 बजे तक सब आएंगे। और सभी भक्तों से विनती है, जैसे हमारे सब श्रवण कीर्तन शिविर में, कि सब पारंपरिक वैष्णव पोशाक पहनेंगे पुरुषों के लिए, चादर या कुर्ता और धोती, टी शर्ट जो आप वृंदावन से लेते हैं वो सब तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि पीठ पर हरे कृष्ण मंत्र है और देवियों के लिए साड़ी। मुझे मालूम है कि पंजाब में ये कुरुक्षेत्र तो पूर्व काल पंजाब में था ना, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है अभी, पूर्व काल में पंजाब में था, पंजाब राष्ट्र में। तो पंजाब में बहुत महिलाएं पंजाबी सूट या सलवार कमीज पहनते हैं, परंतु वैदिक पारंपरिक पोशाक है सारी। विनती है, आदेश नहीं है। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नो मोर फोटोज। फोटो खींचना प्रवचन के बाद कृपा करके। भगवद गीता क्या है? भगवान जो कहते हैं और उनका कंठ स्वर इतना मधुर है कि वो गीत जैसे है, भगवद गीता। और प्रथम श्लोक भगवद गीता में भगवान नहीं कहते, कौन? धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हम अभी कुरुक्षेत्र में। तो इस दो शब्द से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अर्थात धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में समवेत युयोत्सव, जो युद्ध करने के लिए समवेत थे, मामकां पांडवश्चैव, मेरे पक्ष और पांडव के पक्ष। किम कुर्वत संजय, हे संजय, क्या किया है दोनों पक्ष? तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो ज्यादातर लोग जो यहाँ आते हैं यात्रियों, विशेषकर चूंकि इस कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है श्री कृष्ण का भगवद गीता कहने से, उसलिए आते, इससे महान तीर्थ ही है। परंतु धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसका मतलब महाभारत का युद्ध का समय के पहले भी इस कुरुक्षेत्र महान तीर्थ था, धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र का मतलब तीर्थ, कुरुक्षेत्र। इस क्षेत्र कुरु राजा का नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि श्री कृष्ण और सभी पांडवों कुरुओं के वहां जाने के पहले, बहुत पहले, कुरु नामक एक महान पुण्यशाली राजा थे जो इस क्षेत्र चुना ले यज्ञ करने के लिए। तो इस प्रकार पुण्य तीर्थ बहुत पहले से था, और ऐसे समझने हैं कि इस पवित्र भारत भूमि में सब तीर्थ क्षेत्र जो है और धाम जो है और प्रयाग जो है और पुण्य नदियां जो है, तो सब सनातन ही है, अर्थात कुरुक्षेत्र का प्रसंग है। कुरु राजा का यहाँ आने के पहले भी इस स्थान लक्षित था इनका आने के लिए, और इस पवित्र भूमि पवित्र जैसे बनाने के लिए तो पहले से भी पुण्य स्थल था। जैसे वृंदावन धाम श्री कृष्ण का जन्म लेने के पहले वृंदावन धाम तो धाम था, और भागीरथ का गंगा लाने के पहले वो सब स्थान जो, और जिस में से गंगा की प्रवाह जा रहे हैं वो सब स्थल पवित्र ही है। जैसे शास्त्र में वो कहानी है कैसे अग्निदेव भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किए हैं, लेकिन वो सुदर्शन चक्र भगवान का सनातन अस्त्र है और सनातन सेवी ही है। तो लीला के अनुसार भगवान जो इस भौतिक संसार में आते हैं, विशेषकर स्वयं रूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस भारत में अवतरित होते हैं, और इनके अधिकांश रूप अवतार इस भारत में आते हैं। आजकल श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से, जो श्रील प्रभुपाद में से प्रकट है, भगवान कम से कम इस पृथ्वी में बहुत स्थल भारत के बाहर भी प्रकट होते। तो लंदन में जिसमें मैं पहले इस्कॉन में जुड़ी हुआ, वहां पर राधा गोकुल आनंद ही है। तो लंदन बहुत दूर है गोकुल से, लेकिन अभी गोकुल ही है लंदन, लंदन के थोड़ा बाहर ही है। गोकुलानंद ही है तो जरूर गोकुल भी है, गोकुल धाम। तो इस प्रकार ये सब पुण्य स्थली भगवान के आने के पहले और भगवान के महान भक्तों कुरु राजा जैसे इनके आने के पहले लक्षित, तो उसी स्थल पर वो ही लीला होगा। और बाद में लोग समझ लेंगे कैसे ये स्थान पुण्य स्थान ही है। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर का नवद्वीप धाम महात्म्य, उस पुस्तक में भक्तिनाथ ठाकुर हमको सूचित करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के पहले भी बहुत देव देवियों ऋषियों वहाँ गए थे और उन्होंने पता चला कि इस नवद्वीप धाम तो धाम ही है क्योंकि गौरंग महाप्रभु यहाँ पर आविर्भूत होंगे। तो किसी भक्तों को विशेषकर चार संप्रदाय के चार संप्रदाय को और ब्रह्मा जी को शिव को गौरंग महाप्रभु उनका आविर्भाव के पहले ये सब महान भक्तों को नवद्वीप धाम में सबको उनका दर्शन प्रदान किए थे और सबको बताया इसके बारे में कुछ मत कहो क्योंकि मेरा आविर्भाव काल अभी तक नहीं आया। और भविष्यवाणी है शास्त्र में कि कल की अवतार आएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कल की अवतार ऑलरेडी आया है, एक कल की अवतार है वो तमिलनाडु में था, अभी आंध्र प्रदेश में है, लेकिन सब ऐसे छोटे छुआ जैसे कहते हुए अवतार। तो वास्तविक कल की अवतार संभाला ग्राम का नाम है अवतरित होंगे और हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का मत के अनुसार भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर ने कहा कि वो स्थान इस कुरुक्षेत्र के समीप ही है। तो कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध कुरु राजा का पुण्य कर्म यहाँ पर करने से और बहुत प्रसिद्ध हो गया महाभारत युद्ध। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाभारत युद्ध हम ऐसे बोलते हैं, महाभारत युद्ध, महाभारत का युद्ध। वास्तव में महाभारत बहुत दीर्घ ग्रंथ है जिसमें केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं है, बहुत ही है। तो सामान्यतः जब हम महाभारत का युद्ध ऐसे बोलते हैं, हम ऐसे समझते हैं कि वो युद्ध जो युधिष्ठिर or Duryodhan, or in case of Anuyai, ki bij mein tha. To wo us yud se aaj Kurukshetra bahut hi prasiddh hai, aur visheshka kyunki yud ke pehle Bhagavan Krishna inke priya bhakt bhaktosi me sakha chaiti or sak Arjun ko Bhagavad Gita upadesh pradan kiya hai aur Arjun ke dwara sab punyashali jeev ko upadesh pradan kiya the jisse ve achhi tarah sab kuch jo samajhna chahe samajh sakte Gyanam teham savigyanam idam vakshyam yasheshatah yajgyatma neha bhuyon yajgyata vyama vishishyate Gita mein Shri Krishna Arjun ko bataye ki main abhi tumko gyan aur vigyan kahunga jiska samajhne se aur avashesh और बाकी समझना नहीं रहेगा अर्थात तुम सब कुछ समझ लेगा तो इसलिए भगवद गीता क्योंकि ये भगवद गीता का केंद्र का स्थान इसलिए कुरुक्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध का समय के पहले कम से कम एक बार भी इस कुरुक्षेत्र में आए थे और रसिक भक्तों का विचार में वो आगमन और बहुत ही महत्वपूर्ण है वो महाभारत युद्ध का समय में वो आगमन जो था उससे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है उस उपलक्ष्य एक सूर्य ग्रहण और उस उपलक्ष्य पर द्वारका से द्वारका राज द्वारकाधीश अर्थात कृष्ण सब रानियों वरिष्ठ कुटुंबों जैसे उग्रसेन वासुदेव इत्यादि सब विष्णु वंश और इनके सब सेवक द्वारका से प्रस्थान किया इस कुरुक्षेत्र की ओर सूर्य ग्रहण का समय स्नान करना ब्रह्म सरोवर में स्नान करना और अलग अलग पुण्य कर्म करने के लिए जैसे ब्राह्मणों को दान देना दक्षिणा देना शास्त्र में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण का समय यदि इस प्रकार पुण्य कर्म करना है वो फल जो सामान्यतः लोग मिलते हैं वो पुण्य कर्म करने से वो फल से और बहुत 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 गुण मिलते हैं तो इसलिए श्री कृष्ण वहां गए हैं और व्रजवासियों भी गए थे तो सामान्यतः व्रजवासियों तो व्रज के बाहर नहीं जाते थे नंद महाराज मथुरा गए थे कंस महाराज को कर देने के लिए परंतु सामान्यतः व्रज के बाहर व्रजवासियों का जाने की कुछ इच्छा नहीं थी और विशेषकर व्रज की महिलाएं तो व्रज के बाहर नहीं गई थी और वे पुण्यशाली ग्वाला जाति थे, और इसलिए उनका पुण्य अर्जन करना, इतने दूर जाना पुण्य अर्जन करने के लिए का जरूरत नहीं था, विशेषकर क्योंकि वे भगवान के परम भक्त और उनकी प्रगाढ़ अनुराग थी वो व्रज भूमि के प्रति, इसलिए उनकी इच्छा नहीं थी व्रज धाम के बाहर जाना। परंतु चूंकि उन्होंने पता चला कि कृष्णा कुरुक्षेत्र जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि हम भी जाएंगे। वो पुण्य कर्म करने के लिए नहीं, वो तो ऐसा चल था, परंतु उनका उद्देश्य है पुनः श्री कृष्ण के मुखारविंद दर्शन करने के लिए। और वो कृष्ण जो व्रज से प्रवासी थे उनको वापस लाना व्रज धाम में, वो कैसी आशा थी। तो कृष्ण व्रज के बाहर गए और शादी भी की, और खाली एक बार नहीं, खाली दो बार नहीं, 16,108 रानियों से शादी। परंतु राजवासियों तो स्वप्न में भी स्वीकार नहीं की कि श्री कृष्ण किसी दूसरी स्त्री के स्वामी है, या कृष्ण राजकुमार है, द्वारकाधीश है। वे जानते थे कि कृष्ण हमारा गोपाल ही है, और इसलिए निर्णय किया कि वहां से हम कृष्ण को वापस लेंगे व्रज में। तो यदि वो देखेंगे कैसे नंद और यशोदा सदैव विरह भाव से महान दुख का सागा में निमज्जित रहते हैं, तो जरूर श्री कृष्ण नंद यशोदा और सब व्रजवासियों का दुख देखने से राजी होंगे व्रज धाम में वापस आना। तो इस लीला कुरुक्षेत्र लीला जिसमें श्री कृष्ण और व्रजवासियों का मिलन था, वो ही रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा का गुह्य रहस्य ही है। तो कैसे चैतन्य महाप्रभु जो राधा भावाविष्टि है कुरुक्षेत्र से कृष्ण को व्रज धाम में वापस लाना चाहते हैं और करते हैं, तो उसका पूरा वर्णन है श्री चैतन्य चरितामृत में। तो वो लीला और उसका विचार बहुत उच्च है, और श्रील प्रभुपाद का आदर्श के अनुसार हम वो ही लीला वर्णन करते हैं और स्मरण भी करते हैं। परंतु सामान्यतः हमारा व्यवहारिक दैनिक जीवन में और हमारा भक्ति प्रचार में हम विशेषकर भगवद गीता का उपदेश के अनुसार सब कुछ करते हैं। भगवद गीता में वो ज्ञान जो है वो ही श्री कृष्ण का परम उपहार है। पुण्यशाली भक्तोन्मुखी लोग के प्रति, भगवद गीता तो पापी जन के लिए नहीं है, कौन सुनेंगे भगवद गीता, तो पुण्यशाली लोग, पापिष्ट कुछ पापी लोग भी भगवद गीता के ऊपर उनके अपना मत डालने का प्रयास करते हैं, परंतु ऐसे लोग तो पूरा 700 श्लोक भगवद गीता का कंठस्थ करके भी तो कुछ भी नहीं समझते भगवद गीता के बारे में। इसलिए हमें भगवद गीता यथारूप ग्रहण करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद का भगवद गीता यथारूप प्रचार करने का प्रयास अभी पूरी पृथ्वी में इतने सारे लोग भगवद गीता का उपदेश पालन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गति अरण्यथा श्लोक प्रचार किए थे, उनका मुख्य प्रयास था हरि नाम, विशेषकर हरि कृष्ण महामंत्र फैलाना। और साथ साथ उन्होंने भगवद गीता प्रचार किया, भक्ति तत्व ज्ञान प्रचार किए। वो भक्ति तत्व ज्ञान में प्रथम सोपान या आधार है इस भगवद गीता का ज्ञान। वो ज्ञान जो भगवद गीता में है वो तो सभी वेद शास्त्र का सारांश ही है, और वो ज्ञान का विस्तार प्रकाश श्रीमद् भागवत में है, और संक्षिप्त अपूर्ण नहीं है परंतु संक्षिप्त प्रकाश है भगवद गीता में है। और विशेषकर भगवद गीता ज्ञान के अनुसार श्रील प्रभुपाद पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार किए हैं। तो भगवद गीता में 5 मुख्य विषय है, ईश्वर जीव कर्म काल और प्रकृति। और भगवद गीता में अलग अलग विषय, आध्यात्मिक विषय की चर्चा है। श्री कृष्ण का प्रथम उपदेश अर्जुन को, वो ही प्रथम उपदेश जो श्रील प्रभुपाद इनके शिष्यों और सबको बताए हैं, जिसका समझने के बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना संभव नहीं है। और इसलिए इस विषय श्रील प्रभुपाद बार बार बोलते थे इनके वरिष्ठ शिष्यों को भी। वो मूलिक ज्ञान क्या है कि हम सब सनातन ही है, शरीर अस्थाई है, हम सनातन आत्मा ही है। इस विषय समझने के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। ऐसे अलग अलग धर्म है, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियन धर्म, जिसमें वो लोग विश्वास नहीं करते कि पुनर्जन्म होते हैं, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशायनम, वो अविश्वास है, उनका धर्म और उसमें ज्ञान जो है, तो वास्तविक आध्यात्मिक तो नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक होने के लिए तो आत्मा क्या है इसको समझना चाहिए, नहीं तो कैसे अध्यात्मा होगा। तो पहले हमें समझना चाहिए आत्मा, आत्मा क्या है, आत्मज्ञान। भगवद गीता में प्रथम ज्ञान है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान में पहले समझना चाहिए कि आत्मा सनातन ही है। तो शायद आप सोच रहे हैं कि हम तो मालूम ही है, ये बात बोलने का जरूर नहीं, हम हिंदू ही है, तो सब हिंदू विश्वास करते हैं कि हम आत्मा है, हम सनातन ही है। तो शायद अर्जुन भी ऐसे ही सोचे, भगवान कृष्ण जो उनको बताया कि तुम आत्मा हो, सब प्राणी सब जीव जो है सब आत्मा ही है, सबका बार बार जन्म लेना है। तो अर्जुन भी आधुनिक भाषा में हिंदू था, वो शब्द तो नहीं था उस समय, उस शास्त्रिक शब्द संस्कृत शब्द तो नहीं है हिंदू। तो अर्जुन भी जानता था, अर्जुन तो ब्राह्मण नहीं था, पंडित नहीं थे, लेकिन बहुत दफे उन्होंने गुरुजनों से ऋषियों से विशेषकर वनवास का समय उन्होंने बार बार वनवासी ऋषियों से आध्यात्मिक ज्ञान श्रवण किए हैं। और उसके पहले भी अर्जुन पंच पांडव तो सब जन्म लिए थे ऋषि कुल में, नागर में, क्षत्रिय होते हुए भी वे ब्राह्मणों के बीच में रहते थे बचपन में, तो सब जानते थे ये प्राथमिक आत्मज्ञान। फिर भी श्री कृष्णा इनकी पहली शिक्षा में अर्जुन को बताए और व्याख्या किए कि तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं। वो आत्मज्ञान का द्वितीय स्तर है कि परमात्मा और जीवात्मा के में क्या अंतर है। तो मैं आत्मा हूं, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, और सब जो है सनातनी है, ये श्री कृष्ण का प्राथमिक शिक्षा। और बस उसके पहले श्री कृष्ण अर्जुन को तिरस्कार की, क्लाइब्यंग मास मगम अपार्थ, तुम नपुंसक जैसे हो। लेकिन वो गीता उपदेश नहीं है, वो ऐसे अर्जुन को बताया, कुछ धमक दिए थे जिससे अर्जुन उनका विषाद से सचेतन होंगे इस आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए। तो श्री कृष्ण का पहला आत्मा के बारे में उपदेश जो था, न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नैमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामि, सर्वे वयमथ परम, कि हे अर्जुन तुम और ये सभी क्षत्रियों यहाँ आए हैं परस्पर युद्ध करने के लिए, जिसमें प्रयास है शत्रुओं को मार डालना। इस होने वाले युद्ध में बहुत सारे राजा प्राण त्याग करके दूसरे सूर्य में प्रवेश करेंगे। तो श्री कृष्ण का पहला उपदेश है कि मैं तुम और सभी उपस्थित राजा जो है तो सब होंगे। तो कैसे होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या कि वो अर्जुन की इच्छा के अनुसार युद्ध तो नहीं होगा, तो शांति स्थापित होगा, उसका मतलब नहीं। मतलब है कि शरीर का मरण होते हैं परंतु आत्मा का मरण कभी भी नहीं होता। तो ये श्री कृष्ण की पहली शिक्षा है। उस श्लोक के बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, तो विशेषकर श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों में, क्योंकि इस श्लोक पर श्रील प्रभुपाद बार बार शिक्षा प्रदान की। देहिनो स्मिन् यथा देह कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो शिशु का फायदा होते, फिर बालावस्था होते, वो बालक जो है तो धीरे धीरे पूरा पक्का मनुष्य बन जाते हैं। वो शिशु से तो बालक होते, काल का क्रम से शिशु तो बालक होते, बालक तो युवक होते, युवक तो मनुष्य होते, मनुष्य तो वृद्ध होते हैं, और वृद्ध का मरण होते। लेकिन वो मरण क्या है? देहांत प्राप्त, दूसरा शरीर प्राप्त करना, और इसलिए धीरस्थत्र नमोहिति। जो ये सब विषय अच्छी तरह समझते वो व्यक्ति मोहित नहीं होते वो सब देखने से। वो बालक तो वृद्ध हो गया है, तो पहले जो बहुत चुष्ट था तो अभी बहुत कमजोर ही है, और उसका मरण होगा। कौन मोहित नहीं होते? धीर। जो ये सब बातें अच्छी तरह समझते कि केवल शरीर का नाश होते, आत्मा का भी नाश कभी भी नहीं होता। तो इसलिए आप जैसे हिंदू को बताना पड़ेगा, आप सब विश्वास करते, आशा है आप सब विश्वास करते कि शरीर अस्थाई है परंतु आत्मा सनातन ही है। तो फिर भी हम सब मोहित है, यदि किसी हमारे किसी प्रियजन, कुटुंब, पति पत्नी, पिता माता अगर गुजार होते, जब गुजार होते, अगर तो वो शब्द तो ठीक नहीं, अगर तो होगा जब गुजार होते हम शोक करते। श्री कृष्ण कहते धीरस्थत्र न मोह्यति। तो हम मोहित नहीं होना चाहिए, हमें धीर होना चाहिए। धीर का मतलब आत्मज्ञान के चक्षु से सब कुछ देखना, और इसलिए विमोहित नहीं होते। जब जो होगा जब होते हैं हम धीर रहते। तो इसलिए सबको बताना चाहिए, हिंदू भी बुद्धिस्ट भी जैन भी सिख भी जो विश्वास करते हैं कि शरीर का मरण के बाद वो आत्मा रहते हैं, तो वो सबको भी हिंदू सब उनको भी बताना पड़ेगा। तो कैसे होते हैं और कैसे हमें समझना चाहिए। यदि हम अच्छी तरह समझते कि मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं अभी इस शरीर में हूं, मैं जेल में जैसे हूं, ये शरीर में नहीं हूं, ये शरीर मेरा बंधन का कारण है, मेरा स्वभाव है मुक्त, लेकिन चूंकि मैं अभी ईश्वर्य के साथ युक्त जैसे है इसलिए आत्म परिचय करता हूं ईश्वर्य के साथ, और इसलिए मैं सुख दुख का अनुभव करता हूं। तो ये पहली शिक्षा है। तो कैसे हम ईश्वरीय नहीं है, और इस विषय के बारे में श्री कृष्ण अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग ढंग से अर्जुन को बताए। अविनाशी तु तद्विति येन सर्वमिदं ततम विनाशस विनाशस अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। तो मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, लेकिन सभी इंद्रियों से हम अनुभव करते, आंखों से हम अलग अलग चीजों देखते हैं, कानों से हम अलग अलग आवाज सुनते हैं, त्वक से स्पर्श का अनुभव होता है, और त्वक के अंदर में भी कुछ दर्द होते हैं शरीर के अंदर। तो इस प्रकार हम सभी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, तो वो कैसे संभव हो, क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर में है। और जैसे सूर्य का प्रकाश पूरा ब्रह्मांड में फैलते हैं, तो इस प्रकार चेतना जो आत्मा का मुख्य लक्षण है वो फैलते हैं पूरा शरीर में। और जब एक शरीर चढ़ के वो आत्मा जाते हैं शरीर का प्राण त्याग होते हैं, वो आत्मा जाते हैं, विनाशी शरीर का पतन होते हैं, परंतु आत्मा रहते हैं, आत्मा का विनाश कभी भी नहीं होते। तो एक और बहुत सरल उदाहरण से श्री कृष्ण इस विषय के बारे में हमको सिखाते। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। तो ये उदाहरण है कि हम सब पोशाक पहनते हैं, और उस कपड़ा यदि जीर्ण हो तो उसको बदलाना है। तो इस प्रकार शरीर आत्मा का आवरण है, जैसे शरीर का आवरण है पोषक, तो उस प्रकार आत्मा का आवरण है शरीर। और जब शरीर वृद्ध होते जीर्ण होते उसका बदलाना पड़ता है, और प्रकृति भौतिक प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार एक जूना शरीर का नाश होते हैं और वो आत्मा के लिए दूसरा नया शरीर की व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण और कई श्लोकों में द्वितीय अध्याय भगवद गीता का द्वितीय अध्याय में इस प्रकार अर्जुन को शिक्षा प्रदान करते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा ही है। क्योंकि खाली विश्वास करने से हम यथार्थ बल नहीं मिलते, पर्याप्त बल नहीं मिलते इस भौतिक माया से मुक्त होने के लिए। अर्थात हम बोलते हाँ हाँ हम पुनर्जन्म लेंगे, परंतु व्यवहारिक जीवन में हम ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं जिस जैसे हम सनातन ही हैं। हम सब प्लानिंग करते हैं, सब योजनाएं करते हैं जिससे हम सदैव रहेंगे। तो समझना चाहिए कि जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु, जो जन्म लिया है उसका मरण होगा, और ध्रुवं जन्म मृतस्य च, और जो मृत्यु प्राप्त है तो वो पुनर्जन्म लेंगे। इसके बारे में भगवद गीता का 15 नंबर अध्याय में श्री कृष्ण इसके बारे में और भी बोले कि ममाइवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। हा, सब जीव कृष्ण के सनातन अंश ही है, परंतु हम जो इस भौतिक संसार में है, हमारी स्थिति क्या है? मन षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हम इस भौतिक प्रकृति में हैं और हम संघर्ष करते हैं मन और सभी इंद्रियों लेके, हम संघर्ष करते हैं इस भौतिक संसार में, क्योंकि हम इंद्रिय सुख चाहते हैं। इसलिए कि मैं कृष्ण का सनातन सेवक हूँ, उनका सनातन अंश हूँ, हम नहीं जानते। और मौखिक रूप से यदि हम बोलते मैं कृष्ण का अंश हूँ, तो हमारा पूरा प्रयास किस लिए है? कृष्ण सेवा के लिए नहीं है, आत्मा इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो इस प्रकार इस भूल धारणा से कि मैं इस शरीर हूँ और इंद्रियों में से मैं सुख भोग करूँगा, इस भूल धारणा से हम इस भौतिक संसार में संघर्ष करते हैं। इसके बारे में श्री कृष्ण और भी बोले, शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा इतानि संज्ञाति वायोरिव वायोर्गन्धा निवाशयत्। तो ये उदाहरण है श्री कृष्ण का कि हम एक शरीर से दूसरे शरीर जाते हैं, जैसे घ्रण खुशबू या बदबू वायु से एक स्थान से दूसरा स्थान चलते, तो इस प्रकार हम सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म और सूक्ष्म चेतना के अनुसार हम एक शरीर से दूसरा शरीर जाते हैं। इसके पहले गीता में श्री कृष्ण बोले कि यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम थं थमे वायति कौन्तेय सदा तद् भाव भाविता। जो 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 स्मरण मन में आते हैं अंतकाल अर्थात मृत्यु का समय, हमारी चेतना की स्थिति मृत्यु का समय के अनुसार हम दूसरे शरीर मिलते हैं। तो इस प्रकार यदि हम पूरा जीवन में तो सुअर जैसे खाली खाना अलग अलग खाना के लिए खस, जो मनुष्यों के लिए उचित नहीं है, यदि वो हमारा ध्येय है तो इस प्रकार सूक्ष्म शरीर प्रस्तुत होते सुअर का शरीर में प्रवेश करने के लिए। इस प्रकार प्रकृति के नियम चलते हैं। और यदि हम पुण्यशाली होते हैं तो हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं अगला जन्म में देव शरीर प्राप्त करने के लिए। और यदि हम पूरा भक्तिमान होते हैं, हम अपने आप प्रस्तुत करते हैं भगवान के पास, कृष्ण के पास जन्म के लिए। तो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चैव विषयानुपसेवते। तो जैसे हम इंद्रिय सुख भोग करने चाहते वैसे हम यथार्थ शरीर मिलते। तो यदि वो उदाहरण दिया था, यदि हमारा इस मानव जन्म में यदि हमारा मुख्य उद्देश्य है अलग अलग चीजों खन्नक और क्या मनुष्यों के लिए उचित क्या अनुचित है, इस विचार हम नहीं करते। हम मांस मछली अंडा सब कुछ खाते हैं, तो हम अगला जन्म में ऐसे इंद्रियों प्राप्त करेंगे जो सुविधा है अलग अलग चीजों खाने के लिए। और यदि हमारा विशेष अनुराग है मांस खाने के लिए तो हम शेर जैसे शरीर मिलेगा जो सुविधा है मांस खाने के लिए। और इस प्रकार हम अलग अलग अंगों कानों नासिका मुंह इत्यादि मिलते जो सुविधा है अलग अलग इंद्रिय सुख भोग करने के लिए। तो इस प्रकार पुनर्जन्म का विज्ञान होते है भगवद गीता में। कुछ लोग बोलते हैं पुनर्जन्म वाद, वाद का मतलब मत, तो ये मत नहीं है, ये विज्ञान है। और हमें विज्ञानी होने चाहिए, इस मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमें आध्यात्मिक विज्ञानी होने चाहिए जिसमें प्राथमिक शिक्षा है। तो कैसे हम अलग अलग शरीर मिलते हैं, तो जो इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके प्रयास नहीं करते हैं इस प्रकार वैज्ञानिक होना, इसके बारे में Shri Krishna kehte hain Utkramantang sthitang vapi bhunjanam vagunanvitang vimura nanu pasyanti pasyanti jnana chakshushaha. Shri Krishna kehte hain ki hum jnana chakshu hone chahe, arthat adhyatmik vigyane hone chahe. Aur is prakar hame samajna chahiye to kaise sab jeev alag alag sharir milte hain. Jo jeev abhi suha ka sharir mein hai wo suha ka sharir prapt kiya kyunki manav janm mein uski ichha hai to suar ke liye uchit tha, manush ke liye nahi. Isliye Bhagwan inki bhautik prakriti mein se wo jeev ko daya karke aisa sharir pradan kiya jisse wo mohit jeev uski papmai ichhaon ki purti kar sakti suha ka sharir mein. Aur jo is prakar vigyani nahi hai, jo nahi jante, jo gyan chakshu se kaise ek jeev ek sharir se dusre sharir jante hain, to wo vyakti vimura. Bhagwan Shri Krishna kehte wo vyakti bara murkhi hai. To isliye hum jo Srila Prabhupada ke ashray mein hain, hame is Bhagavad Gita gyan jo yahan par Krishna Arjun ko bataye aur hum parampara mein se milte hain aur visheshkar Srila Prabhupada se grahan kiya hai, to hame is Bhagavad Gita gyan leke अच्छी तरह समझ के हमारा इस दुर्लभ मानव जन्म में अभ्यास करना चाहिए. वो ज्ञान जो खाली बोलने के लिए नहीं है, उसके अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे हम भगवद गीता का ज्ञान का परम फल प्राप्त कर सकेंगे. वो परम फल जो है मैं बाद में दूसरा सत्र में कहूंगा यदि भगवान पार्थ सारथी की इच्छा हो. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा.